ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक संख्या 35। प्रजापति स्वां दुहितरम् प्रजापति स्वां दुहितरम् दृष्ट्वा तत्रूपदर्शितः रोहित भूतं स्वन्नधावात् रोहित रूपा स्वन्नधावा रुख्यारूपी हतत्रपः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा अपने पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और अब उसने मृगी के रूप धारण कर लिया, तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तात्पर्य, ब्रह्मा का अपनी पुत्री के रूप में पुत्री के रूप पर मोहित होना तथा भगवान की मोहिनी पर शिवजी का मोहित होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं। तो सामान्य बद्ध जीव की क्या विसात है। अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सगी पुत्री अपनी माता या अपनी बहन तक से मुक्त भाव से न मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मनुष्य प्रेमांध हो जाता है और इंद्रियां पुत्री माता या बहन का नाता नहीं देखती। अतः मदन मोहन की सेवा में लगकर भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को बस में करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम होगा। भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन है क्योंकि वे कामदेव या काम वासना को बस में कर सकते हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करने से मदन के आदेश पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को बस में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम जो प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम की चर्चाएं करते हैं, आपस में इस विषय को समझते हैं, ये भक्ति को दृढ़ बनाता है। भक्तिर भवति मिष्टिक, इसलिए भागवतम की प्रति शब्द उसके प्रति अक्षर उसमें बहुत सारे अर्थ हैं, जिसको बड़े बड़े भावुक रसिक संतों भक्तों ने इसको आस्वादन किए हैं। उनमें से श्रील प्रभुपाद ने जड़ भौतिकवादी लोगों को बहुत सरल रूप में मार्गदर्शन करने के लिए भक्ति वेदांत तात्पर्य प्रदान किए हैं। हम जो विषय आज चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति को जीव को क्या क्या गति प्राप्त होती है इस विषय में बतलाते हैं और इसके कारण के विषय में भी बतलाते हैं। पहले से आप लोग सुन चुके हैं कि ये संसार में सबसे बड़ी बंधन क्या है, काम। जो मनुष्य में अत्यधिक रूप में पाया जाता है रजोगुण होने के कारण। तो भगवान अपने माता को कहते हैं जत असत भी, ये जो असत भावना है कि जो अपने जीवन के लक्ष्य को केवल काम भोग के लिए उद्दिष्ट की है, ऐसे व्यक्ति असत भी फति, ये असत रास्ता में चलने वाला पुनः निष्ण उदरा कृतत्यमयी, ये बार बार अपने जनन इंद्रिया और फेट को संतुष्ट करने के द्वारा आस्तितः रमते जंतु स्तमा विसति पूर्ववत, फिर उनको तमा जोनि वा पशु आदि वा वृक्ष आदि जोनि प्राप्त होती है। फिर आगे चर्चा किए, ठीक है उस जोनि में भी हम भोग कर सके, पशु भी करता है, लाइसेंस मिलता है, तो भगवान कहते नहीं माता, जो मनुष्य शरीर में जो भगवान इस मनुष्य शरीर को निर्माण किए ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे गुण हैं, दोस्त हैं ही, लेकिन इस काम वासना में एक बार पतित होने पर ये सारी गुण नष्ट हो जाती हैं। ये कौन सी गुण? सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीहि जस क्षमा सम दमः भगस्येति दत्संगा जाति संख्ययम्। वीर राघव आचार्य इस 12 गुण की व्याख्या करते हैं, जो स्त्री संग से अत्यधिक आसक्त होने पर ये गुण नष्ट हो जाता है। हम इसको समझेंगे, सत्य क्या है? कहते यथार्थता, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, इसको कहते सत्यम। शौचम, बाह्य अभ्यंतर शुद्धत्वम, अंदर और बाहर की शुद्धता को शौचम कहते हैं। दया, पर दुख प्रहरण इच्छा, दूसरे के दुख देख करके, आर्तता को देख करके उस दुख को हरने के लिए जो इच्छा है वो काम वासना से नष्ट हो जाती है। दूसरे को दुख देख करके इच्छा भी नहीं होता इसको, अरे अपने भोगने दो। खास करके शहर में देखो, कोई एक्सीडेंट पे गिर पड़ा है रोड साइड में, लोगों की नजर नहीं जाता, अरे अपने काम में चलो। चौथा गुण है मौनम। लोग कभी कभी चुपचाप रहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं हाँ वो तो बाहर को प्रदर्शित करते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, परंतु जब तक वो मुंह नहीं खोलते हैं तब तक मूर्ख व पंडित हाँ है को उसका पहचान नहीं होता है। परंतु मौन का अर्थ है कि वृथा आलाप निवृत्ति, अननेसेसरी टक, जिसको हम कहते हैं प्रजल्प, ये नहीं करनी चाहिए। यदि कोई काम वासना से एडिक्टेड हो जाता है, उसके एक सिम्टम से वे अधिक बोलता है और बहुत फास्ट बोलता है, तो जानना चाहिए उसके अंदर रजोगुण है। बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या है? हेय और उपादेय। वास्तविक बहुत सारी चीज को हम सोचते हैं कि हाँ मुझे सुख देने वाले हैं, जिसको भगवान कहते हैं फ्रेय। सब जीव को इच्छा है कि मुझे तुरंत सुख मिल जाए, परंतु जो बुद्धिमान और विवेकवान व्यक्ति हैं, तो हेय और उपादेय, वा जो प्रेय और श्रेय, जो परमानेंट लास्टिंग करने वाला है, उसको कहते हैं श्रेय। तो उस विषय को जो विचार कर पाता है उसको बुद्धिमान कहते हैं, वा बुद्धि कहते हैं। हली, लज्जा, श्री, धन वा शोभा, तात्पर्य में पढ़ेंगे। प्रभुपाद कहते काम वासना में अत्यधिक आसक्त होने पर लोग कुत्ते बिल्ली की तरह सबके सामने यह संभोग करने की इच्छा करते। हम देखे अमेरिका में कि लोग गार्डन में जाते हैं और वहां निर्लज की तरह लज्जाहीन हो जाते हैं। जस, जस का मतलब है सत कीर्ति, क्षमा, पर अपराध सहिष्णुता, जो वैष्णव के पहला गुण है जो सहिष्णु होना, ये भी नष्ट हो जाती है। सम मन निग्रह, दम इंद्रिय निग्रह, भग सौभाग्यम ऐश्वर्यादय भगवत धर्मश्च। तो भगवान कपिल देव कहते हैं माता, जो इसी प्रकार असत पथ पर चलने वाले हैं ये 12 गुण नष्ट हो जाते हैं। तेसु अशांतेसु मूढ़ेसु खंडित आत्मा सु असाधुसु। जब ये सब गुण नष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, भद्र अभद्र के विचार नहीं रखता है, उसकी हर कार्य अशांतेषु अभद्र, और विचार नहीं करता है, मूढ़ खंडित आत्मा, कोई रुचि नहीं रखता है कि यह लोक और परलोक में कैसे सुख प्राप्त किया जाए, मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, इस विषय में कोई चिंता नहीं करता है। असाधु संगम न कुर्यात्, इस प्रकार असत व्यक्ति की संग कभी नहीं करना चाहिए। सोचेसु, क्योंकि इस प्रकार संग करने से बहुत शोचनीय दशा को प्राप्त होती है जी। कहते क्यों, न व्यक्ति जो इस प्रकार अपने गुण को खो दिया है और स्त्री के हाथ में एक खिलौना बन जाता है, किस प्रकार, कहते जोसिप क्रीड़ा मृगे सूचा। तो प्रभुपाद इसका अनुवाद लिखते हैं, जैसे कुत्ते जैसे बन जाता है। लेकिन गिरिधारी लाल देते हैं कि क्रीड़ा मृगवत बानरवत अधिनेशु, जैसे बंदर को मादारी है ना जो नचाता है, जैसे रस्सी में बांध करके उसको जैसे आदेश देता है, टोपी लगाओ टोपी लगा लेता है, चौकदारी करो घूम लेता है, तो ऐसे ही तो मादारी कौन बनता है, स्त्री, और वो पुरुष ऐसे बंदर की तरह नाच करता है। सोचेसु जोषित क्रीड़ा मृगेशु च, इसी प्रकार वो व्यक्ति आय का मादारी के हाथ में बंदर बन जाता है। न तथास्य भवेत मोहो, कहते देखो इस संसार में हम कहते हैं ना हम तो फंस गए हैं, तो क्या फंसना है, तो कहते हैं मोह ही इस संसार को बांध देता है। कदी इसी प्रकार मोह और संसार में नहीं है, न तथास्य भवेत मोह, बंधश्च अन्य प्रसंगतः, दूसरी प्रकार के संग करने से इसी प्रकार मोह वह जो इल्यूजन जीव की बुद्धि को ढकने वाली जो शक्ति, ये उत्पन्न नहीं होता है। किससे उत्पन्न होता है? कहते जैसे जोषित संगा जथा पुंसह जथा तत्त संगी संगतः। कहते स्त्री वास्तविक असत नहीं है, स्त्री संग व असत वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति व भोग करने की इच्छा ही ये कहते असत संग। तो महाप्रभु कभी नहीं किए हैं कि स्त्री संग त्याग करो, कहते असत संग त्यागी यही वैष्णव लक्षण। तो फिर भगवान स्त्री और पुरुष को क्यों बनाए हैं? परंतु भोग करने की जो इच्छा है, शरीर को भोग करने की इच्छा है, एक बहुत बड़ा मोह उत्पन्न करता है। और इसके कारण है कि जीव जब तक उस कार्य के परिणाम को नहीं देखता है तब तक उससे निवृत्ति नहीं हो सकता है। अर्जुन युद्ध करने की पहले भगवान से पहले ये तर्क प्रस्तुत किए, कहा कि आप क्यों मुझे इस युद्ध में लगाना चाहते हैं, क्या कारण है? तो भगवान कहे आप क्षत्रिय हैं और ये धर्म युद्ध है। अर्जुन कहता नहीं, धर्म युद्ध तो है लेकिन इस युद्ध के परिणाम क्या है? ये परिणाम पे विषय में दुर्योधन आदि अवगत नहीं है, परंतु मैं भली भांति इसको देख सकता हूं ये युद्ध के परिणाम क्या है। यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसः कुलक्षयम् कृतम् दोषं मित्र दोहे च पातकम्। कि निश्चित ये हमको नरक में गिराने वाला है ये कार्य, लेकिन ये लोग को दिखता नहीं इसके परिणाम। यद्यप्यतेन पश्यन्ति, किस लिए दिख नहीं पाते हैं? लोभ, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इतनी हंकरिंग आता है। समुद्र मापम, जैसे समुद्र के और नदियां बढ़ जाते हैं तो इससे काम बस नहीं। कहते उसी प्रकार, कहते न बंधात प्रसंगत, अन्य प्रसंग में नहीं होता है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं धन से भी नहीं होता है, सोना आदि में नहीं होता है, वस्त्र और घर मकान से भी नहीं होता है, इतने आसक्ति ये वास्तविक बंधन नहीं है। बंधन है क्या है? पुंसाम स्त्रीय मैथुन भावम तोयोर हृदय ग्रंथि आहु। बंध क्या होता है? हृदय की बंधन गांठ। ये तो ईटा सीमेंट के दीवाली है, ये बंधन नहीं है। जेल भी बंधन नहीं कि ऊंचे पाचेरी है, बाउंड्री है। बंधन है प्रत्येक जीव के अंदर जो काम वासना, जो हृदय को बांध देता है, वो क्या है? पुंसम स्त्रीय मैथुन्य भाव तो यो एतत् हृदय ग्रंथिया। और फिर अतः गृह क्षेत्र सुताप वित्ति जनस्य मोह यम अहम मामेत। उसके बाद रेसिडेंस, नहीं तो किराए पर ले लेते हैं। फिर गृह क्षेत्र, कुछ तो होना चाहिए, क्षेत्र के मतलब कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए। सुता आपदा, विवाह के बाद सब चाह करते हैं हमारे कुछ संतान हो। वित्ती, इस चीज को इकट्ठा करने के लिए जो भाव उत्पन्न होता है, महाभागवतम भक्त प्रवर प्रह्लाद कहते हैं इस प्रकार जीव अहम और मामेति, मैं और मेरा, ये भाव को उत्पन्न करता है। कहते और अन्य संग से नहीं होता है। कुछ दिन पहले परम पूज्य राधाकुंद महाराज के कमरे में हम बैठे थे, तो महाराज कह रहे थे तो हम जब पहले वृंदावन आए तो किसी घाट पर जो जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक कुटिया था, सुदाम कुटी जो है, तो हम जब गए प्रसाद पाने के लिए तो हम सोचे यहां पर कुछ दिन ठहरने के लिए। तो वहां की जो मैनेजर था तो महाराज से कहे, शुरू शुरू में आए थे महाराज सब, कहे तुम संसार किए हो कि नहीं। तो महाराज दोनों में पड़े, संसार क्या होता है, संसार किए हो कि नहीं। तो महाराज थोड़े से मैं रुके, कुछ उत्तर नहीं दे पाए। तो फिर वो बाबा ने हाथ हिलाए बने, अरे शादी किए हो कि नहीं बताओ। तो सोचते तो महाराज हंस पड़े कि वास्तविक संसार होता है विवाह, क्योंकि संसरति इति संसार, जो वृद्धि करता है, ये मोह को वृद्धि करता है। क्या है? सुत आप्त धना। इसलिए कहते ये जो संग है ये कभी नष्ट नहीं होता है, इसकी हमेशा ही जवानी रहता है। इसलिए कपिल देव ने कह रहे हैं कि माता ये क्या है, पहला अध्याय में बताए हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनम कबयो पितु। कहते ये जो संग है ये तो पास है, लेकिन ये पास कभी ढीली नहीं पड़ता है और इसको कभी जरा नहीं आता है, इसको वृद्धावस्था नहीं आता है, ये हमेशा ही जवान में रहता है। तो ये कौन समझेगा? कहते आत्मनम कबयो विदु, जो आत्मज्ञान में निपुण है वो ही समझ सकता है। ये प्रसंग प्रकृष्ट संग है। कहते फिर इस बंधन से कैसे निकला जाए? कहते सैव साधु सुकृतम, जिस प्रकार हम उद्यम करते हैं, स्वाभाविक है, पुरुष स्त्री को देखने से आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष को देखने से आकर्षित होता है। तो ऐसी यदि भावना हम एक शुद्ध भक्तों के प्रति डेवलप करें, सएव साधु सुकृतम मुक्त द्वारम अपावृतम, तो मुक्ति के द्वार खुल जाता है। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वार जोशित संगी संग। जोशित के संग करने वाला व्यक्ति से जैसे दारू पीने वाले की संग करने से दारू पीने की इच्छा होता है, दारू ऐसा टेस्ट नहीं देता है। किसको शराबी बनना है तो शराब पीने वाले के संग करना पड़ता है। तो ये संसार में जो कुछ हमारा अंदर जो डिजायर उत्पन्न होता है ये संग से हुआ है। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार संग? साधु संग। इसलिए श्रीधर स्वामी टीका में कहते असत संग निंदंती सत्यम इति त्रिभी। इस श्लोक से यह 35 नंबर श्लोक तक तीन श्लोक में सत्संगात के फल के बारे में चर्चा की गई है। पंचम स्कंद में भी प्रह्लाद जी कहते हैं मागार देहात्म वित्ति बारात्म वित्तेसु संगम जदि स्याद भगवत संगीना। वास्तविक आपका इच्छा है कि यह संसार से पार पाने के लिए निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ जोषितानाम हंत हंत विषभक्षण अपि साध। ये संसार में डालने वाला वह संसार के सागर में डुबाने वाले जो साधन है वो है विषय व्यक्ति, उसको दर्शन करना। इसलिए महाप्रभु कहे नहीं नहीं, भले ही ये पुरुषोत्तम देव महान भक्त हैं, परंतु उसके टाइटल है, वो राजा है, विषयी है, मैं उसको देखने के पहले मैं ये जगन्नाथपुरी छोड़ दूं, नहीं तो मैं आत्महत्या करूं, नहीं तो समुद्र में कूद करके मैं प्राण त्याग दूं। महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट। असत संगा सत्यादय खेयम जानती, ये असत संग से सत्य आदि जितने सब अच्छे गुण है नष्ट हो जाते हैं। जोषित संगा जोषित संगी संगीतम जथा मोहम बंधास भवेत तथा अन्य प्रसंगात न भवेत मोहादि न भवेत। तो कहते हैं कि वास्तविक जोषित संग से हम कहें कि दुराचारी कुलट्टा स्त्री के संग करने से सब कुछ नष्ट हो जाते, कहते नहीं, यहां तक यदि स्त्री भी स्वाधी है, परंतु जोषित कहने का अर्थ यह है कि तुरंत काम वासना उत्पन्न करने वाला है, जोश जो संसार को भोग करने के लिए जो क्या कहते हैं उत्साह पैदा करता है, जोश पैदा करता है, वो है स्त्री। कहते जोषितम संगस्य अनर्थम हेतुनं प्रपंचयति सप्तभि प्रजापति ब्रह्मा स्वांग दुहितरं सरस्वतीं दृष्ट्वा दृहितृ रूपेण शरीरम सौंदर्येण धर्षिता। ये कहते ठीक है कि यदि स्त्री सती है, सदाचारिणी है, तो उसमें क्या बंध है? कहते देखो इस उदाहरण है प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता जो सत्तो गुण से है उत्पन्न हुए हैं। स्वाम दुहितरम अपने पुत्री को दृष्ट्वा देखकर तदरूप धर्षिता उसके रूप से इतनी आकर्षित हो गए, क्या हुआ ना उनकी ये दशा देख करके जो बाघ अवतार बाघ शक्ति से प्रकट हुई सरस्वती ने समझ गई कि मेरे पिता की बहुत बुरी दशा होने वाली है। इन्होंने तुरंत उन्हें तो मनुष्य शरीर धारण करके जन्म नहीं हुई थी, प्रकट हुई थी, देवी है, परंतु अपने इस पिता को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत मृगी के रूप धारण कर ली। परंतु काम वासना इतनी बलवत्ती है तो ब्रह्मा ये भी सोचे नहीं कि मेरे पुत्र आदि खड़े हैं, मरीचि आदि खड़े हैं, जिसमें कहते हैं हतत्रपा, अपने लज्जा को उन्होंने नष्ट कर दिए, खो दिए। उन्होंने क्या हो गए रुक्ष रूपी, वो भी एक मृग के शरीर धारण कर लिए। और इतना नहीं, वो जब मृगी रूप धारण करके सरस्वती ने भागने लगी, ब्रह्मा जी भी उसकी पीछे पीछे दौड़ने लगे, अन्नोधावत। तो मरीचि आदि पुत्र ने कहा अरे क्या हो गया उनकी, ये ब्रह्मा जी सृष्टि करता वेद वक्ता जिनके मुख से वेद निकलता है उनकी दशा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा की अपनी पुत्री के रूप पर मोहित होना तथा भगवान के मोहिनी रूप पर शिव जी की मोहित होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं। तो फिर सामान्य जनता की बात क्या? तो मरीचि आदि तो स्तुति करने लगे, प्रभु ये आपकी माया बहुत प्रबल है, पार करना बहुत कठिन है। परंतु मरीचि के पुत्रों ने हंस पड़े, जिस कारण से महत अतिक्रम होने के कारण उनको फिर असुर योनि मिला, जो देवकी के पुत्र के रूप में आकर के भगवत कृपा से उनके उद्धार हुए। तो वास्तविक देखिए कि संसार में जो इल्यूजन जिसको कहते माया शक्ति और कुछ नहीं है, ये अपने मन के अंदर ही बैठा हुआ है। व्यक्ति अपने को जब तक संयमित नहीं करेगा से कभी नहीं बच सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा खास करके आत्मसंजमी व्यक्ति के लिए बड़ी शत्रु है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासत। तो कुछ टीकाएं हैं, कहते तदर्थम आत्मनं अपि नाशितवान इति आह रुख्य रूपी इति तदर्थम रोहित रूपो सजातीय स्त्री पुरुष वाचको। कहते ये जो दिए हैं रोहित और रुख्य, रोहित है कि मृगी और रुख्य है मृग शरीर। कहते एक सजातीय अट्रैक्शन रहता है, जिसे बंदर और दूसरी प्राणी के प्रति आकर्षित नहीं होता है, वो सजातीय बंदरियों के साथ। विशेष करके मैं एक संत से सुना था कि जब किसी के मन ऐसे विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है तो मनुष्य अपनी स्त्री के सामने ही अपने पराक्रम प्रदर्शित करता है। जैसे बंदर को आप देखे होंगे तो बंदरियों को देखकर कि कभी कभी इलेक्ट्रिक पोल पा पेड़ को हिलाता है, वो दिखाता है कि मेरे पराक्रम कितना है। तो ऐसे जो मनुष्य है वो दिखाता है कि अपने स्त्री के सामने अपने पराक्रम दिखाता है। कभी कभी वो दिग्विजय करके आता है, परंतु जो मुकुट प्राप्त करता है अन्य राजा से, वो स्त्री के पास आकर के उस मुकुट उतार करके उनके चरण में रख करके लक्ष्मी जी की वंदना करता है। ये पुरंजन उपाख्यान में नारद जी कहते, कहते कितनी शक्तिशाली, उन्होंने एक राज्य के राजा को फलस्त कर दिए, परंतु स्त्री के सौंदर्य के सामने उन्होंने अपने मुकुट को बेच दिए उतार करके। इसलिए मनुष्य का जो मोह उत्पन्न होता है, कहते जनस्य मोह, ये जो प्रबल शक्ति है इसको पराजित कर देता है। तो इसलिए मनुष्य जब तक भगवत विषय में चर्चा नहीं करता है, इस विषय को बोध नहीं करता है, बोधयंतः आपस में, ये कोई विचार नहीं है कि हाँ बहुत अच्छा लेक्चर था, ये विषय ठीक है, लेकिन जब तक खुद अपने को एक शिक्षक नहीं बनाता है, टिस नहीं करता है, इस बंधन से निकलना बहुत कठिन है। इसलिए भागवत में कहा गया है विद्यन्ते हृदय ग्रंथि चिंदन्ते सर्व संशया। इसको काटता है संशय को, हम खोल नहीं सकते। जैसे गांठ पड़ जाता है धागा में, उसको आप खोलने की प्रयत्न करो तो बहुत गांठ है, तो कितने समय लगेगा, ये जीवन बीत जाएगा। इसलिए भागवत श्रवण को महान साधना बाज, इसको नाम संकीर्तन है, जो तुरंत काट देता है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तो तुरंत ये डिटैचमेंट पैदा करता है। इसलिए मनुष्य को, खास करके जो साधक हैं, जो भक्ति पथ पर बढ़ना चाहते हैं, इस विषय को गंभीरता से विचार करके भगवान में मन को लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कि जब तक मन भगवान में नहीं लगता है तो बंधन को काटना संभव नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं मतीर्न कृष्णे परतो सतो बा मिथ्योपि प्रद्येत गृह प्रतानम। दूसरे कहने पर, साधु संतों की व शास्त्र के उपदेश होने पर व स्वाभाविक जो अपने बुद्धि प्रज्ञा है स्वतः, और दोनों की मिलित प्रयत्न से यदि मन कृष्ण में नहीं लगता है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, अदांत गोभी, उसकी इंद्रियां असंजमित है। और चूसा हुआ को बार बार चूसता है, पुनः पुनः चर्विता चरवणान। कर्म कांड ज्ञान कांड सकली विषयी भांड, अमृत वलिया से खाए, उनको लगता ही नेक्टर है, दान दक्षिणा देना, गाड़ी में घूमना, अच्छा घर को सजा के रखना, पुत्र पुत्रियों की विवाह बहुत स्टेटस परिवार से कर देना, लेकिन सब जूस निकल जाता है। इसलिए अभी प्रद्येत गृह व्रतानम, क्योंकि उसकी व्रत हो गया है, अरे मैं आपके लिए सारे व्रत त्याग कर दूं, एकादशी जन्माष्टमी ये सभी व्रत मैं आपके लिए त्याग कर दूं, क्यों ना आपको मैं गृहिणी को संतुष्ट करना चाहता, तो इसलिए कहते गृह व्रत। यदि गृहिणी नहीं है तो गृह नहीं है, तो गृह व्रत को अपनाने वाले व्यक्ति विषताम तमिश्रम नरक आदि गति को प्राप्त करते हैं। और फिर कहते हैं कि भाई देखो फिर कैसे बचे, कहते ये देखो खुजली जैसे हैं, दिल्ली के लड्डू खाए तो पछताए, नहीं खाए पे पछताए। तो ये पछतावा से कैसे बचे, कहते ऐसे है कि खुजली है, हाँ जैसे खुजली होता है ना हमारा स्किन डिजीज होने पर, तो हम हाथ तुरंत चल जाते हैं अपने आप, खुजलाहट होता है, परंतु खुजलाने के बाद क्या होता है, जलन भी उत्पन्न होता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कंडू यनेन करो योर बहु दुख दुखम, परंतु तृप्यन्ति नेह कृपणा, जो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की लक्ष्य को नहीं समझने वाले हैं, कृपणा माइजर व्यक्ति, वो क्या करता है, उसको ऐसे दुख प्राप्त होता है, परंतु मनसिजम विषये तधीर, परंतु जो जान लेता है कि नहीं खुजलाने से और बढ़ेगा, इसलिए मैं सहन कर लो धीरा, क्योंकि मन से उत्पन्न होता है भावना खुजलाने की, इसलिए मन को संयमित कर लेना चाहिए। जन्म मैथ्यादि गृह मैथ्य सुखम मैथुच्छ, तो कहते ये जो आकर्षण, ये ब्रह्मा शिव बड़े बड़े महत्पुरुष को भी नीचे गिरा देता है। जततंग हफ्फी कुंते पुरुषस्य विपस्सिता, विद्वान बड़े बड़े जानकार व्यक्ति सब कुछ जानते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंतिम प्रसभंग मना, वो खींच करके लगा देता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य, अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वो अपने संगी सगी पुत्री अपनी माता अपने भैया उनके साथ पे भी एकांत में ना बैठे, मात्रा स्वस्रा दुहित्रुम्बा न विवेक्त आसनम भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामं विद्वांस अफिकर्षति, बड़े बड़े विद्वान सत असत के विचार रखने वाला व्यक्ति को भी वो बलपूर्वक लगा देता है। इस प्रसंग में दो घटनाएं हैं, जो कहते बड़े बड़े विद्वान लोग को मोहित कर लेते हैं, हाँ नारद आदि भगवत प्रवर भक्त, उनकी एक सूक्ष्म डिजायर हुई, उसके बाद में शिव जी की बात कहूंगा समुद्र मंथन के बाद। तो जब कामदेव ने, जब नारद जी नर नारायण की आराधना कर रहे थे, तो कामदेव ने अपने बाण चलाए, वो सोचे कि नारद जी इंद्र ने भेजा कामदेव को, पहले तो शिव जी को अपने ध्यान नष्ट करने के लिए भेजे थे, तो तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ शिव जी की, तो कामदेव को जला दिए थे, फिर उन्होंने प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। फिर एक दूसरे कल्प में नारद जी के ऊपर कामदेव ने बाण चलाए इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर, तो नारद जी जब देखे कि बसंत और सब अप्सराएं हैं, मले हवा बहता है, तो आंख खोलती देखे अरे ये कौन है, परंतु कामदेव सोचे अरे मैं तो विफल हो गया, और तुरंत वो सोचे कि शिवजी जैसे मुझे जला ना दे और तुरंत क्षमा याचना करने लगे। तो नारद जी कहे कोई बात नहीं जाओ। परंतु नारद जी को अपने किया हुआ कर्म पर बहुत आत्मग्लानि हुई, घमंड आ गई। देखो शिव जी तो काम को सहन कर लिए, परंतु काम का दूसरा रूप जो क्रोध है उसको तो प्रकट करके जला दिए, परंतु मेरे मन में ऐसा नहीं हुआ। तो नारद जी के मन में अपने ग्लोरी, देखिए साधक के अंदर जब अपना ग्लोरी को सुनने के लिए इच्छा व भावना पैदा होता है, वो कभी कभी भक्ति पथ में थोड़ा सा हट जाता है। ये भी एक अंदर की माया है। तो नारद जी सोचे कि ये सूचना मैं दे दूंगा किसको, शिव जी को दूं कि देखिए मैं कामदेव से कभी प्रभावित नहीं हुआ। तो शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे जाके पहुंच के, तो नारद जी कहे कि ऐसा ऐसा है, तो हाथ जोड़ करके शिव जी ने उनको प्रार्थना किए कि बात मेरे सामने कह दिया और दूसरे के पास नहीं बताना और खास करके विष्णु के पास ये बात नहीं कहना। नारद जी सोचे अब देखो कैसे भोला है ये, मैं इतनी बड़े कार्य करके आया तो थोड़े से भी प्रशंसा नहीं करता है, तो कुछ कहे तो नहीं, लेकिन सोच करके चल गए नारायण के पास और नारायण के सामने बखान किए। तो भगवान नारायण कहे क्या नारद, आप जैसे महान संत महापुरुष महाभागवतम के लिए कौन सी बड़ी कार्य है, तो कामदेव को हरा देना, आपके नाम उच्चारण करते ही तो सारे काम नष्ट हो जाता है। तो नारद जी कहा इसलिए तो मैं आया था नारायण के पास, देखो कितनी सुंदर प्रशंसा की स्तुति की। लेकिन बाहर बाहर से नारद जी कहे कहे कि प्रभु ये तो सब आपकी कृपा है, परंतु अंदर से सोच रहे हैं मैं कितने बड़े कार्य किया, मुझे नारायण स्वयं प्रशंसा की, परंतु बाहर से कि प्रभु ये आप तो आपकी कृपा है, जैसे हम सब लोग बाहर बाहर से कहते हैं ये तो प्रभु आपकी कृपा है, किंतु अंदर से सोचते ये सारे मेरी ग्लोरी है। तो भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में क्या अभिमान उत्पन्न हुआ है, जानते हैं। मैं संक्षेप बतलाऊंगा, समय हो गया। तो फिर नारायण कहे ठीक है नारद जी अभी आप लौट जाइए, परंतु भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा वत्सल रहते हैं, भक्त वत्सल भगवान है। जो निज जन स्मयम ध्वंस नस्मिता, गोपियां कहते हैं अपने भक्त के अंदर जो अभिमान हो जाता है तो स्वयं भगवान इसको नष्ट करते हैं। तो भगवान ने ऐसा नारद जी को एक लेसन देना चाहते थे, तो ने एक सुंदर नगरी बनाए। तो नारद जी दिखा रही बहुत सुंदर है, ये तो मेरी तपोभूमि हो सकता है, चिड़िया चहक रहे थे, सुंदर बाग बगीचा है, फूल खिले हुए थे। तो अंदर गए थे, देखे कि सुंदर नगरी है, तो वहां के राजा हैं, उनकी पुत्री की विवाह होने जा रहा था। तो नारद जी को देख करके राजा ने उनको निमंत्रण किए कि देखो मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, उनकी भविष्य क्या है थोड़ा हाथ देख करके बता दीजिए। तो नारद जी जब देखे उनके हाथ और उनके चेहरा देखे तो तुरंत आकर्षित हो गए और कहें कि इनकी जो पाणी ग्रहण करेगा वो पराजय हो जाएगा और उनकी आयु बढ़ जाएगा। परंतु नारद जी सोचने लगे कि यही कुमारी का विवाह मेरे से ही होनी चाहिए, मैं तो योग्य हूं, लेकिन मुझे वो कैसे पसंद करे। तो सोचे उपाय है, मैं प्रभु के पास जाता हूं और उनसे याचना करता हूं कि वो अपने रूप थोड़े समय के लिए मुझे दे दें, क्योंकि उनके रूप से तो करोड़ कामदेव भी आकर्षित हैं। तो गए भगवान के पास और सारे बात कह सुनाए और उनसे याचना किए प्रभु कृपा करके थोड़े समय के लिए मुझे आपकी रूप दे दीजिए, मेरे स्वयंवर हो जाए फिर मैं आपको लौटा दूंगा। तो कहे अच्छा हरि के रूप दे दूंगा। तो हरि का अर्थ भी होता है बंदर, सिंह भी है हरि के अर्थ। तो नारायण ने कहे जैसे आपकी भलाई हो मैं ऐसे ही करूंगा। तो नारद जी खुश हो गए, देखो प्रभु की दया तो असीम है, मुझे प्रशंसा की, अभी अभी फिर अपने रूप भी दे रहे हैं विवाह करने के लिए। और पहले तो नारायण के पास कहे कि देखो मैं आपके नाम तो हमेशा ही जप करता हूं, नाम जप करते करते मेरी जुहा से पानी सूख गया है और मेरे तंबुर के तान भी टूट गया है, अब मुझे शादी करने की इच्छा है, तो कुछ ना कुछ तो फल दो। तो भगवान का ठीक है, फल प्राप्त हो जाएगी। स्वयंवर सभा में नारद जी बैठ गए, तो जो विश्व मोहिनी जो राजा की पुत्री थी तो माला लेकर की वर्णमाला लेकर के जब जा रही थी तो नारद जी उमंग से उठ रहे थे, क्योंकि वो लड़की तो मुझे ही चुनेगी, तो बार बार उमंग से उठ रहे थे। परंतु साथ में शिव जी की दो अनुचर बैठे हुए थे कि देखो ये कैसे चेहरा लेकर के आया है और शादी करने के लिए यहां बैठ गया स्वयंवर में। नारद जी को गुस्सा आया और वो लड़की भी माला नहीं डाला, तो स्वयं नारायण भी वहां बैठे हुए थे, तो जब नारायण के गला में डाल दिए तो नारायण ने नारद जी क्रोधित होकर के वो स्वयंवर सभा छोड़ के भाग चले और कहे अच्छा मेरे साथ ऐसे बेईमानी किया है, इसका इतने सेवा पूजा किया ऐसे किया, तो तालाब में जाकर सचमुच देखे तो बंदर कम हुआ है। तो नारायण लक्ष्मी जी को लेकर के आ रहे थे, तो उन्होंने अपने जनेऊ निकाले, नारद जी पानी उठा करके तालाब से कहे कि आज से मैं शराब देता हूं, जैसे वो लड़की को प्राप्त नहीं कर न करके मेरे हृदय में जैसे व्यथा हो रहा है तुमको भी ऐसे एक दिन दुख भोगना पड़ेगा अपने पत्नी के प्रयास। देखो तो कुछ समय के बाद जब भगवान अपने माया को हटा लिए तो नारद जी सुचारी में क्या कर दिया, जिस प्रभु के मैं नाम लेता हूं उनको मैं शराब दे दिया। तो चरण में नारद जी गिर पड़े और क्षमा याचना की। तो फिर जब भगवान श्री राम सीता के वियोग में उस किष्किंधा पहाड़ पर बैठे हुए थे तो जाकर के नारद जी कहे प्रभु मेरी साप तो आपको लग गया। तो भगवान श्री राम कहे नारद जी देखो एक पत्नी के वियोग में मैं कैसे दुख भोग कर रहा हूं, यदि मैं उस पत्नी को आपको दे देता तो तुम्हारा दशा कैसे होता है। भगवान तो ये नाटक था, इसलिए भगवान कहते हैं मैं जिसकी पर कृपा करता हूं इस भौतिक संपत्ति का हर लेता हूं। तो शिव जी की भी दशा ऐसी हुई, समुद्र मंथन के पश्चात जो भगवान मोहिनी रूप को धारण करके असुरों के हाथ से अमृत छीन करके देवतालों को फिला दिए, तो शिव जी इस असेंबली में नहीं थे, तो शिव जी को जब पता चला शिव जी पार्वती के साथ और अपने गणों के साथ पहुंच गए और भगवान को बहुत सुंदर सुंदर स्तुति के द्वारा संतुष्ट किए, प्रभु आप तो सारे गुण की खान हैं, जैसे माइन से सोना निकलता है और गहना में जो सोना लगता है एक ही है लेकिन लोगों की भिन्न दृष्टि से अलग अलग प्रतीत होता है, और सब कुछ आप ही करते हैं और हम तो आपकी आत्मे के पुतली की तरह धागा में बंधा हुआ माया रसी से हम सब परिचालित होते हैं। तो भगवान कहे क्या शिव जी क्यों इतना बड़े बड़ी स्तुति करते, क्या काम है बताओ। कहते प्रभु यही बात है कि सारे देवता लोगों को आप अपने सुंदर रूप दिखा करके संतुष्ट किए, मैं देख नहीं पाया, कृपा करके मुझे देख लाएंगे। तो भगवान कहे अरे महेश ये क्या बात है, आपका नाम हर है, आप सब कुछ हरण कर लेते हैं, ये रूप तो सिर्फ कामुक व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए मैं प्रकट किया था, तुम क्यों इसको देखना चाहते हो। और दूसरी बात ये थी कि असुर लोग ने छीन लिए थे अमृत का कलश और मैं सोचा मेरी संरक्षण में रहने वाला देवताओं को कैसे मैं अमृत पिलाऊं, इसलिए मैं उनसे लेकर के आ गया। तो शिव जी का नहीं प्रभु मैं थोड़ा तो आपके रूप देखना चाहता हूं। तो भगवान कहे ठीक है। पार्वती के साथ खड़े हैं शिवजी और अपने भूतगण भी सब चार तरफ खड़े हैं। भगवान इतना कह करके प्रकट हो गए और देखे एक सुंदर वन है, कुंजलता है, वहां एक स्त्री ने गेंद खेल रहा है। तो इसको देख करके शिवजी का आंख वहां पड़ गया, अरे कितनी सुंदर स्त्री है। तो वो गेंद कुछ ऊपर उछलाती हैं तो कभी उनके जुड़ा खुल जाती हैं, तो बाएं हाथ में जुड़ा को बांधती हैं। तो एक समय वो देखे कि हवा ने उस सुंदर स्त्री की वस्त्र को उड़ा ले ली। तो ये देख करके शिवजी का मन अथय हो गया। पास में पत्नी खड़ी है परंतु उनके नजर नहीं रहा। तो तुरंत शिवजी सोचे, उनकी मन में ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी मन में सारे लज्जा और विज्ञान भी नष्ट हो गया। इसमें कह रहे हैं विमोहितम जगत आत्म माया, भगवान की माया से इतनी मोहित हो गए प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेन विनिर्जितः। उन्होंने सारी लज्जा को त्याग करके सोचे नहीं ये मुझे प्राप्त हो जाए, और थोड़े से उन्होंने अपने भौवों से शिवजी के ओर इशारा करते हुए थोड़े मुस्कान कर दी। इस इतनी सुंदर मधुर मोहक मुस्कान था तो शिवजी विचलित होकर के वो सोचेगी ये मुझे भी चाहती है। तो तुरंत शिवजी दौड़ने लगे कि मेरे बेस्ट वाइफ। तो फिर जब वो स्त्री भागने लगी तो शिवजी भी उनको आलिंगन करने के लिए प्रयास किए, उनका जोड़ा को पकड़ लिए। तो फिर जब नारायण ने देखे, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस रूप को धारण किए थे, कि शिवजी आज क्या हो गया, राम राम के ध्यान भी टूट गया। तो शिवजी कहते दैवी है सी गुणमयी प्रभु, आप ही गीता में कहे ना कि आपकी माया बहुत पार करना बहुत कठिन है, इसलिए भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए। मामे व ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। तो भगवान और भगवत भक्तों के संरक्षण में जब तक नहीं रहेंगे तो इस माया को पार करना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संगे हरि नाम एकमात्र चाहिए, संसार तरिते आर अन्य वस्तु ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा की जय। समय तो हो चुका है, प्रश्न नहीं ले सकते। श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जीव की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।